The following is a lecture on Udo Sandesh Pramagit from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, Verse 15, on the topic of who is that woman in the universe who is not captivated by Lord Sri Krishna's smiling face and sweet words. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami in Khadia, India, on 28th of December, 1998,
चरण रज उपास्ते जस्य भूतिर्भयंकर अपि च कृपणपक्षे युत्तम श्लोक शब्दः
इसमें प्रेसी शिरोमणि आप क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं? आपका स्मरण करके श्री कृष्ण आनंद विकल है और आपको प्रसन्न करने के लिए हमें आदेश दिए हैं, इसीलिए मैं आपके शरण में पड़ रहा हूँ। आप किसी तरह प्रसन्न हो जाइए, कृष्ण के दोषों को क्षमा कीजिए। वो आपको छोड़कर के सपने में भी किसी स्त्री को नहीं जानते, उनके पास कोई स्त्री नहीं है। तो कहते हैं स्त्री नहीं है, अरे तीनों लोकों में या स्त्री स्यु जो भी स्त्रियां हैं उनमें से कौन उनके लिए दुर्लभ है?
दिवि भुवित रसायां का स्त्रिय दुरापहा कपट रुचि रहा सभ्रु विजिंभस्य यास्यु चरण रज उपास्ते जस्य भूति भयंका अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्दः।
मथुरा की स्त्रियां तो मानवी हैं, पृथ्वी की हैं, इस पृथ्वी पर क्षत्रिय जाति की। वे श्री कृष्ण को कैसे दुर्लभ हो सकते? वे मिले उनको ये क्या आश्चर्य है? अगर श्री कृष्ण कदाचित स्वर्ग में यात्रा करें तो अरे भ्रमर, उनके पास ऐसा कपट की ऐसी कपट की हंसी है और ऐसी भाव स्थल संचालन करते हैं। यदि ये स्वर्ग में जाए तो वहां की सारी स्त्रियां अपने अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण की दासी बन जाएंगी। केवल सुन करके सबका चित्त आकर्षित है, जब जाएंगे इनको देख करके सबका पतिव्रत नष्ट हो जाएगा। दिव्य स्वर्ग में, भूमि पृथ्वी में और रसायन नीचे के लोगों में, मतलब नाग लोक में जितनी भी सुंदरी सुंदरी स्त्रियां हैं उनके लिए कौन दुराता है? अर्थात कोई नहीं, सब नहीं सकते हैं, सब इनको चाहते हैं। कपट रुचिर हास और कपट रुचिर भ्रू विजृंभ, विजृंभा पाते हैं संचालन को, देखने की ऐसी शैली है कृष्ण के पास कि वे हंस करके और भावों को चला करके जिस स्त्री को देख दें तो क्यों नहीं वो उनके जाल में, उनके बस में हो जाएगा। बस इसके कारण कहीं भी जाएंगे तो किसी भी स्त्री को बस में कर सकते हैं भौरे। और तुम कहते हो कि उनको कोई स्त्री नहीं है, वे आपका चिंतन करते हैं। अरे यही भाव की मरोर और रुचिर हास ही कारण है। अब यहां कह रहे हैं फिर लक्ष्मी जी के लिए, बेचारी चरण रज में लोट रही, चरण नहीं मिला तो रज में धूल खा रही, चरण रज में लोट रही, ऐसा इनके पास आकर्षण है। चरण रज उपास्ते जस भूति, जस चरण रज है, इनके चरण रज की उपासना श्री जी कर रही हैं, फिर हमारी क्या गिनती कि हमको चाहेंगे? जिनको सारे जगत की स्त्रियां सुलभ हैं, लक्ष्मी जी सुलभ हैं, सुलभ क्या हो, बेचारी चरण रज में लौट रही है उनके पास होने के लिए। गोपियों जैसा सौभाग्य पाने के लिए लक्ष्मी जय चरण रज की उपासना कर रही है, तो कह रहे हो कि कोई स्त्री नहीं, और लक्ष्मी जी के सामने हम लोग क्या है, वो तो समस्त धन के अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं, भगवान नारायण की पत्नी हैं, हम क्या है, हमारे में क्या, हम तो देवी भी नहीं, एक मानिनी है, मानिनी में भी गोपी है, गोपी में भी न हमारे घर है न द्वार है और गृहान, हम तो बिल्कुल दीन ही है, हमको क्यों मनाना चाहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो हमसे प्रेम करते हैं, हाथ भेजे होंगे तुमको कि जाकर ऐसे झूठ बोलो, ये करो वो करो। चरण रज उपास्ते जस भूति लक, कृष्णा से कहते थे तो लिखते हैं, भो कृष्ण प्रेयसी शिरो मरे तत्र स्थित स रात्रि दिवम एवं त्वाम ध्यायन काम शरार्दित खिद्यति। श्री कृष्ण मथुरा में रात दिन आपका ध्यान करते हैं, आपका चिंतन, आपके चिंतन में रहते हैं, काम बाण से घायल हैं। त्वम तु प्रसीदसि तदैव तस्य निस्तारयति शास्त्रियम, आप जब प्रसन्न होंगी तभी कृष्ण का निस्तार है। तब कृष्ण में दोषारोपण करते हुए कहती है, इसका ये अर्थ है, कृष्णस्य स्त्री बिना स्त्री भी बिना कालो न जाती थी हम सुस्थु जनानि। श्री कृष्ण का स्त्रियों के साहचर्य के बिना काम नहीं चल सकता, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तत्र यदि मथुराया में स्त्रियों न मिलंती तदा सो अस्मान ध्यायतु प्रसादयतु तत्र नेतुं तादृशं दूतं च प्रस्थापयतु। यदि उनको स्त्री न मिले तब ये माना जा सकता है कि हम गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ये हमारा ध्यान कर रहे होंगे और हमको प्रसन्न करना चाहेंगे और तुम्हारे जैसा दूत भेजेंगे। यदि न स्त्री सुलभ होता नचक गोप जाति तम पुरस्त्री क्षत्रिय जाते कथम संगीत परिश्रम के तीसरी बात से। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई गोप जाति के कृष्ण है तो क्षत्रिय जाति की स्त्रियां उनको कैसे स्वीकार कर सकती है, ऐसा नहीं है भावरा जतो दिवी भूवि इति। इसी प्रश्न का उत्तर जाते शब्द है तो तत् इति अव्ययम तस्य का दुराता, तद इति अव्ययम तस्य का दुराता, तद अव्यय है उसका अर्थ है तस्य, तद का अर्थ तस्य, उनके लिए कौन स्त्री दुराता है। यदि स स्वर्गे गच्छे, यदि कृष्ण स्वर्ग में जाएंगे तदा दिव्योपी रसायन रसातला दिशु नाग पत्नी होती स्वस्व पति त्यक्तवा तम आगछे मथुरांगना तो कालार्ता इतिहास। यदि श्री कृष्ण स्वर्ग में जाए तो स्वर्ग की देवियां उनकी दासी हो जाएंगी, नागलोक में नाग सुंदरियां उनकी दासी हो जाएंगी, और फिर मथुरा की स्त्रियों की तो कालार्ता, इनकी तो बात नहीं, ये तो मानवी, वो क्यों नहीं कृष्ण के बस में हो जाएंगे। नचत तत्दंगना प्राप्त किंचित प्राणाधिकम अपेक्षित नित्या है। और ये भी नहीं है कि कृष्ण को उनकी स्त्रियों को प्राप्त करने में भिन्न भिन्न लोकों में कुछ लगेगा, प्राणाधिकम कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि इनके पास ऐसा मूल्य है, कपट हास मूल्य नैवता स्वयं एवं कृता, इनके पास ऐसा बहुमूल्य दाम है कि अगर हंस करके देख दें बस इसी पर सब बिक जाती है, बिक जाएंगे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के हाथ की विशेषता, बस एक हंसी भर चाहिए तो कौन स्त्री उनके बस में नहीं हो जाएगी। कपट हास मूल्य नहीं बता स्वयं कृता भूतवा स्वस्व पतिस्ताजन, कपट पदेना कपट शब्द से कृष्णस्तु ताहता सकृदय भुक्त्वा त्यजति। तो ठीक है वो स्त्रियां कृष्ण के पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन कपट का अर्थ श्री कृष्ण केवल उनको अपने प्रेम जाल में पकड़ करके और फिर छोड़ देते, नव प्रियत्वादिति भाव कपट का ही अर्थ। दिव्यादय दूरे वर्तनता भूति, अरे देवी आदि के तो दूर बात छोड़ो, देवलोक के देवताओं की कुमारियां या नाग कुमारियों की बात छोड़ो, भूति ही श्री जी लक्ष्मी जी लक्ष्मी नारायणस्यापि स्त्री,
देवताओं की स्त्रियां कृष्ण का भक्त हो जाए, नाग की स्त्रियां, वो तो दूर की बात है। नारायण की पत्नी जिसको वेद कहता है कि पतिव्रता शिरोमणि है, तो नारायण की स्त्री भी और वो भी चरण रज उपासते एक गोप के कृष्ण के चरण धूलि में लौटती है लक्ष्मी। क्या उसकी बेचारी की दुर्दशा है। चरण रज उपासते तदंग संगार्थम इति नाग पत्नी वाक्यम परमासी मुखादश्रवस में। नाग पत्नियों ने कहा है जब भगवान काली का दमन कर रहे थे,
कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग रेणो स्पर्शाधिकार जदवांछया श्री ललन चरतप विहाय कामान सुचिराधृत व्रत।
हे देव, हम नहीं समझ रहे हैं कि जिस चरण रज को पाने के लिए श्री जी आज तक भोगों को त्याग करके दृढ़ व्रत लेकर के तप कर रही हैं, उस चरण रज को बिना किसी तपस्या के इतना तमोगुण में रहने वाला हमारा पति पा गया, पता नहीं इसने क्या किया था, किस भक्ति का किस जप तप का यह प्रभाव है कि आपका चरण मिला। श्री जी तो इसके लिए व्याकुल रहते हैं। श्री ललना जो नारायण की ललना है, बहुत प्यार से भगवान रखते हैं लक्ष्मी जी, अपने छाती में रखते हैं, बाएं भाग में कलेजा होता है, कलेजा जैसा वो प्यार करते हैं लक्ष्मी जी से और रखते हैं। तो नारायण की बक्षो विलासिनी लक्ष्मी जी चाहती है कि कैसे सुन लिया इन लोगों ने, तो कहते पौर्णमासी जी के मुख से हम लोगों ने सुना है कि लक्ष्मी तप कर रही है कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए ब्रज में आज भी। तो लक्ष्मी जी को चरण रज मिला नहीं, कृष्ण का संग नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने गोपी जनों के भाव का अनुगमन नहीं किया। उनके मन में भाव आ गया कि गोपियों की मैं अनुगा बनूंगी, मैं सबसे महान स्त्री में डायरेक्ट कृष्ण के साथ प्रेम करूंगी, तो इसी पर आज तक तप कर रहे। तो गोपियों के भाव का अनुगमन की होती, उनके पीछे पीछे चली होती, तो अब तक तो कृष्ण को पा गई होती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, इसलिए नहीं पाई है। तो पौर्णमासी जी जो जोग माया का अवतार है ब्रज में, वो सब बातें बताया करते थे कृष्ण पर कौन देवता लुब्ध है, कौन देवी, तो लक्ष्मी तप कर रही है। ये सुन करके कहती है, इन सबके द्वारा भगवान से कृष्ण की असमूर्ध महिमा सूचित हो रही और उनका अवतारित्व भी सूचित हो रहा है कि भगवान नारायण की पत्नी श्री कृष्ण ने आसक्त। ये सोचने की बात, कोई भी गोपी कभी नारायण में आसक्त नहीं हुई। नारायण में आसक्त होने की बात छोड़ दीजिए, प्रेम भाव तक पैदा नहीं हो सकता। लेकिन लक्ष्मी जी श्री कृष्ण का संग पाने के लिए तप कर रही हैं, विहाय कामान और सुचिरम दीर्घ काल से तप कर रही हैं, धृत व्रत भक्ति के बहुत से नियम करके और तप कर रही। तो श्री कृष्ण मूल ईश्वर है, परम ईश्वर है, इन भागवत के इन श्लोकों द्वारा व्यक्त हो रहा है अपने आप। गोपियां सपने में भी कभी किसी दूसरे भगवत स्वरूप के विषय में नहीं सोची होंगी, लेकिन श्री जी चूंकि उनके पति ही अपने परमोर्ध अवस्था में श्री कृष्ण के रूप में है, अतः श्री कृष्ण का अंग संग चाहती, यह सिद्धांत यहां निकल रहा है। दिव्या देव दूरे बर्तनता, देवी आदि तो दूर रहे, भूति लक्ष्मी नारायणस्य अपि स्त्री चरण रज उपासते तदंग संगार्थम इति। चरण रज में लौट रही है, उपासना कर रही है श्री कृष्ण का साथ पाने के लिए, उनकी प्रिया बनने के लिए। नाग पत्नी वाक्यम पौर्णमासी मुखाद अस्त्रौष्ण अतो वयम का। लक्ष्मी जिनको स्वयं ही चाहती है आज तक नहीं पाई, लक्ष्मी इतना महान स्त्री है नारायण, वो चाहती है, तो हमारी क्या गणना है कि कृष्ण हमको चाहेंगे। अतो वयम का कस्याम गणनायाम तिष्ठाम, हम किस गिनती में। वास्तविक बात यह है कि राधा रानी यहां भी गर्भ गर्भित ईर्ष्या कर रही है। ध्यान इस बात का, प्रेम में या सौंदर्य में हमारे आगे लक्ष्मी क्या है? ऐसा नहीं मान लेते हैं कि नहीं नहीं लक्ष्मी हमसे बड़ी है इसलिए कृष्ण हमको क्यों चाहेंगे। श्री राधा का जो भाव है वो परम आत्मीयता में, वो जानती है कि हमारे अलावा कृष्ण और किसी स्त्री से प्रेम कर ही नहीं सकते। उनको जैसे दो भाव है प्रेसियों में, मदीयता का भाव, मदीयता और तदीयता। तदीयत तदीय भाव रुक्मिणी आदि जी में है कि मैं कृष्ण की हूं, और कृष्ण अगर एक बार कह दे कि ऐसा है रुक्मिणी कि तुम अब बहुत विचार करके कोई श्रेष्ठ क्षत्रिय को चुन लो, मैं तो ऐसे केवल राजाओं का मद चूर करने के लिए तुमको लाया था, हमारी कोई स्त्री में आसक्ति नहीं है, मैं कोई जरूरी नहीं समझता हूं कि मेरे पास स्त्री रहे, हमारे न घर द्वार है न कुछ है, राजधानी छोड़कर भागा हूं, यहाँ समुद्र में एक जगह बनाकर किसी तरह रहता हूं, कि तुम राजकुमारी हो, हमसे तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो मैं तुम्हारा पति हूं, तुमको आज्ञा देता हूं अभी भी किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को चुन लो जो राजकुमार हो। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी गिर गई, क्योंकि उनका तदीय भाव मैं कृष्ण की हूं और कृष्ण ने छोड़ा, कृष्ण छोड़ेंगे मुझे, इसी पर वो बेहोश हो गए इतना सुनकर। लेकिन राधा रानी से भगवान कभी ऐसा कह दे, राधा रानी का भाव है कृष्ण मेरे हैं और कृष्ण की मैं हूं, यह भाव है, यह भी बहुत ऊंचा भाव है। मैं कृष्ण की हूं ये तो ठीक है, लेकिन नहीं, कृष्ण मेरे हैं, अपना पूरा अधिकार है, इसलिए मान होता रहता है। जानते हैं कि मनाएंगे ये करेंगे, प्रगाढ़ भाव में होता है। तो गर्व से यहाँ ये गर्व से कह रहे हैं कि क्या लक्ष्मी हमसे अधिक सुंदर है? नहीं, मैं सबसे सुंदरी, मैं सबसे प्रेमवती। जो कृपण के पक्ष में रहता है उसमें उत्तम श्लोक शब्द रखना चाहिए। सबसे धनी लक्ष्मी जी के साथ जो रहता है और इतना वैभव के साथ, उसमें उत्तम श्लोक शब्द नहीं लगना चाहिए। उत्तम श्लोक कृपण पक्ष है, कृपण के पक्ष में जो है, मतलब दीनहीन का हमेशा पक्ष करता है, उनकी सहायता करता है, उसके लिए उत्तम श्लोक शब्द है, न कि ऐसे कठोर व्यक्ति के लिए जिसमें दया नहीं है, उसको उत्तम श्लोक शब्द दे दिया। अथवा ये भाव होगा कि कुछ भी है, लक्ष्मी जी कृष्ण की दासी है, हम लोग दीन है, लेकिन भौरा, उत्तम श्लोक शब्द कृपण के लिए है, तो श्री कृष्ण उत्तम श्लोक है तो हम ही लोगों पर दया करेंगे, हमारा पक्ष करेंगे, क्योंकि हम कृपण हैं, हम दीन हैं। कृष्ण के लिए उत्तम श्लोक शब्द उचित नहीं, अभी भी दोषारोप कर रहे हैं। उत्तम श्लोक शब्द कृष्ण के योग्य नहीं, वो कृपा का पक्ष नहीं लेते हैं, वो दीन का पक्ष नहीं लेते। तो इसे कपट रुचिर शब्द पर घनानंद जी ने एक पद लिखा है, उसको पढ़ते हैं। कृष्ण अंतर्गठीले, भीतर से बड़े कड़े हैं, हृदय बहुत कठोर है कृष्ण का, लेकिन मुख ढीले ढीले बयान बोले। गोपी कहती है कि हे कृष्ण, आप भीतर से बहुत कड़े हैं, लेकिन मुख से बहुत ढीले ढीले वचन बोलते हैं। ढीले मतलब मृदु मृदु, और सुंदर सुजान तौ प्राणनी खरे खगौ। हे प्रियतम, आप भीतर से बड़े गठीले हैं, कड़े हैं, आपका कलेजा बहुत कड़ा है, लेकिन मुख है से बड़ा ढीला ढीला वचन बोलते हैं, मृदु। हे सुंदर सुजान, ऐसा बोलने पर भी आप कठोर हैं, फिर भी तब प्राणनी खड़े लगो, फिर भी प्राणों के लिए बड़े प्रिय लगते हैं। खड़ो का अर्थ प्रिय, खड़े लगो, बहुत अच्छा लगते हैं। साच किसी मूर्ति है वाखी मन में पैठो आए, और आप साच बोलते हैं क्या, ऐसा लगता है कि सब के ही मूर्तिमान हो गया है। बोलते हैं हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि सब के ही मूर्तिमान होकर के और आकर के हमारे आंख में बैठ जाता। साच किसी मूर्ति हो आखी में बैठो आए, महानिर्मोही मोह मोह सो महानिर्मोही मोह सो महे ही ठग। आप महानिर्मोही हैं, फिर भी हृदय में मोह पैदा करते हैं। स्वयं में निर्मोही है, किसी के प्रति उनका मोह नहीं है, लेकिन दूसरे को मोही बना देते हैं। आप निर्मोही हैं, लेकिन आपके लिए हमारे हृदय में बहुत बड़ा स्नेह है, मोह है, ठग लेते हैं। आनंद के घन उघरे पे छल छाए ले, हे आनंद के घन आप उघरे हैं। उघरे का अर्थ होता है आप छाए नहीं है, आकाश से हमेशा दूर रहते, मतलब दर्शन नहीं देते हैं, परंतु फिर भी छल छाए ले, छल से छाए रहते हैं, सामने नहीं छाते हैं, लेकिन हमारे मन में या इधर उधर छाए रहते हैं। कटुताई भरे रोम रोम ही अमी पगो, आप कटुता से भरे हैं, बहुत कटुता आपने है, कठोरपना है, लेकिन जिसके हृदय में आप आ जाते हैं उसका रोम रोम अमृत से भर जाता है, अथवा आप कटुताई से भरे हैं फिर भी आपके रोम रोम में अमृत, यह अद्भुत बात। चाह मतवारी मति भई है हमारी, देखो प्रेम से मेरी मति मतवाली हो गई है। क्या मतवाली हो गई है, कपट करे हूं प्यारे निपट भले लगो, आप कपट करने पर भी बहुत अच्छा लग रहे हैं, मेरी बुद्धि ऐसी पगली हो गई, हमेशा कपट करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं। अंतराग ठीले मुख ढीले ढीले बन बोलो, अंतराग ठीले मुख ढीले ढीले बोलो, सुंदर सुजान तेहु प्राणनी खरे खग, सुंदर सुजान तेहु प्राणनी खरे की सी मूर्ति हो आखी न में बैठो आयो, साच की सी मूर्ति हो आखी न में बैठो आयो, साच की सी मूर्ति हो महानीर मोही मोह सुमरे ही यो ठग, महानीर मोही मोह सुमरे ही आनंद के घन घर पे छल छाए ले तो, आनंद के ताई भरे रोम रोम ही अभी पग, कटु ताई भरे चाह मैं तुम्हारी मोती भरी है हमारी देखो, चाह कपट करूं प्यारे निपट भले लगा, कपट करूं प्यारे कपट करूं प्यारे निपट भले लगा, कपट कृष्ण कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी वो बहुत प्रिय लगते हैं। इसमें राधा रानी कहते हैं कपट रुचिर, आपका कपट भी बहुत रुचिर लगता है।
कपट रुचिर हास, कपट से हंसते हैं पर वो हंसी बहुत अच्छी लगती है। तो कपट करे हूं प्यारे निपट भले लगो, तो कपट रुचिर हास, हास और भ्रू विजृंभ, बस दो चीज, हंसी और भाव मटकाना, दो कृष्ण के पास ऐसा अस्त्र है, इस पर कौन स्त्री है संसार में जो उनके बस में नहीं हो जाएगी। मुकुट मनोहर में लटक अटक भरी, मुकुट घूमर बिलोचन चलावे काम कटक, घूमर बिलोचन चलावे काम कटक, केसर की खौरी रारी पार तो निहारे मन, केसर की खौरी रारी पार तो निहारे दौरी दौरी रंग संग रंग नीत भटक, दौरी दौरी रंग संग कहाँ कहाँ हेली मन मोहन अनुप रूप, कहाँ कहाँ इते मान बसुरी हत, इते गान बसुरी, इते मान बसुरी हटावे लाज हट के गान, देखे घन आनंद रसिली मृदु मूर्ति को, देखे घन ऐसी कौन बावरी सयान लयन पटक, ऐसी कौन बावरी मुकुट मनोहर में लटक अटक भरी, उनकी उनका जो मुकुट है कृष्ण का वो भी ऐसा लटक करके रहता है, सीधा मुकुट नहीं बांधते हैं भगवान, जैसे भगवान विष्णु या भगवान श्रीराम बांधते हैं सीधा मुकुट बांधते हैं, कृष्ण का सब टेढ़ा है, टेढ़ा मुकुट बांधते हैं और चाल भी टेढ़ी है। तो राधा रानी कहती है मुकुट मनोहर में लटक अटक भरी, मुकुट लटकी हुई है, चाल भी लटक लटक कर चलते हैं, और घूमरे बिलोचन चलावे काम कट कर, घूमरे माने घूमने वाले, तिरछे नेत्र से देखते रहते हैं तो ऐसा लगता है काम की सेना सज करके चल रही है, कटक मन सेना, काम की सेना सज जाती, कौन ऐसी स्त्री है जिसके मन में कृष्ण को पाने की अभिलाषा न हो जाए, केसर की खौरी रौरी पारत तो निहारो मन, और केसर जो लगाए हैं अपने बदन में तो उसको देखते निहारते ही मन उनके तरफ दौड़ जाता है, दौड़ी दौड़ी अंग संग रंगन इत भटक, और उनके शरीर के और भी जो अंग संग करता है मन तो उनमें दौड़ जाता है भटक, कहा कहो हेली मनमोहन अनूप रूप है, हे अली से हेली शब्द बना, हे अली हे सखी मनमोहन का अनूप रूप को क्या कहूं, इते गान बांसुरी हटावे लाज हटक, बांसुरी का गान ऐसा है कि लाज का समूह हट जाता है, हट मतलब समूह, लाज बिल्कुल नहीं रह जाता बांसुरी सुनने पर, देखे घनयानंद रसीली मृद मूर्ति को, यदि घनयानंद की रसीली मधुर मूर्ति को उनके विग्रह को कोई देखे तो ऐसी कौन बावरी सयान लयन पटक, ऐसी कौन सयानी स्त्री है चतुर इस जगत में जिसको बावरी बना करके न पटक दे। भगवान का सौंदर्य ऐसा कौन किसको नहीं पटक देगी, वो कौन उनके पीछे दीवानी नहीं हो जाएगी। मुकुट मनोहर में लटक अटक भरी, मुकुट मनोहर घुमरे बिलोचन चलावे काम कटक
घुमरे बिलोचन
केसर की खरी नारी पारत निहारे मन पारत का अर्थ है केसर का जो तिलक किए हैं वो मन को पटक देता है पारे मतलब वहीं ले जा करके पराजित कर देता है मन वहीं लगा रहता है दौरी दौरी अंग संग रंगनी क्या भटक
दौरी दौरी अंग संग
कहा कहा हेली अन मोहन अन परूप इते मान इते गान बासुरी हटावे लाज हटक
इते गान बासुरी
देखे घन आनंद रसिली मृदु मूर्ति को देखे घन ऐसी कौन बावरी सयान लयन पटक
ऐसी कौन
फिर अभिलाषा हो रही कि कृष्ण कब वह मुस्कान वह लीला वह रूप दिखाएंगे वह मुस्कान ज्ञानी वह मृदु बतरानी वह
मुस्कान
लड़की बानियानी उर में अरती है कोई सखी अपने सखी से करे कि हे सखी वही मुस्कानी कृष्ण का वही मुस्काना उनकी वह मधुर बातचीत और लड़कीली वाणी का अर्थ लड़के जैसी आदत मतलब सयाने की आदत नहीं लड़कीली वाणी अनुरने और रहती है और जाती है या लड़कीली वाणी का मतलब हुआ झगड़ा करने वाली उनकी आदत जब हम लोग निकलती थी दही बेचने के लिए तो रोक लेते थे तो उनकी आदत जो दान लेने की थी लड़ने की रोज कलह करने की वही हमारे हृदय में आकर के और गई है लड़कीली वाणी यानी उर्मे अरती है वह गति लाइन उस प्रकार का गति लेना उनकी चाल और बजावनी ललित बैन और वह ललित बांसुरी बजाना वह हंसी दैन हियराते न तरती है और वह हंसी और हंसी पूर्वक कुछ देना हमारे हृदय से नहीं हट रही है वह चतुराई सुचिताई चाहिए की छवि और चतुरता से तीर्थी चितवन से देखना और चाहना या प्रेम करना वो छवि वह छैलताई न छिनक बिसरती है वह उनकी छैलता लीला बिला विस्मृत नहीं होती है आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो की शुद्धि सब भांति में सो बेशुद्धि करती है उनकी जब शुद्धि आती है तो हमको बेशुद्ध कर देती है शुद्धि आकर बेशुद्ध कर देती है वह मूस ज्ञानी वह मृदु बात रानी वह मूस ज्ञानी वह लड़कीली बानी यानी उर में आरती है
लड़कीली बानी यानी
वह गति लना बजावनी ललित बन वह गति वह हंसी दन ही रात न टरती है
वह हंसी दन ही रात न टरती है
वह चतुराई सा चिताई चाई में की छवि वह चतुराई वह छलताई नाची न कभी सरती है वह छलताई नाची न कभी सरती है आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो की आनंद निधान सुधी सब भांति न सौंदे सुधी करती है सुधी सब भांति न सौंदे सुधी करती है सुधी सब भांति न सौंदे सुधी करती है
तो भगवान के हास्य का वर्णन है तो कृष्ण कर्णामृत में बिलमंगल ठाकुर उनके हास्य का वर्णन कर रहे हैं
अखंड निर्वाण रस प्रभाव विखंडिता से सदशांत राणी अयम प्रीतोद्वांत सुधारण वाणी जयंत सीतानि तव स्मितानि
हे कृष्ण तव स्मितानि आपके अस्मित समूह आपकी मुस्कान है बहुवचन में कह रहे हैं आपका कई तरह से हंसना जयंती विजय को प्राप्त हो रही है मतलब सर्वोत्कर्षेण वर्तन भगवान के स्मित की जय बोल रहे हैं आपके मुस्कान की जय हो और स्मितानी बहुवचन में आप बहुत प्रकार से मुस्कुराते हैं ऐसा मुस्कुरान जगत में सबसे बढ़कर के है ऐसा कोई नहीं मुस्कुराता है ऐसा कोई नहीं हंसता है स्मित का अर्थ होता है कि वह हंसी जिसमें दांत न दिखाई पड़े यदि दांत दिखाई पड़ता है तो उसको हास्य कहते हैं भगवान कृष्ण मंद मुस्कुराते थे दांत नहीं दिखाई देते थे और हंसते थे उसको स्मित कहते हैं उसको मंद मुस्कान कहते हैं मंद मुस्कान आवाज नहीं निकलती है लेकिन चेहरे पर पूरा प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है उसे मंद कहते हैं ऐसे मंद मुस्कान भी कृष्ण कई तरह की करते थे कई तरह के करने का अर्थ उनके उनका जो बदन मुख था पूरा बदन मंडल उसमें आंखों को कभी तिरछी करते थे कभी सीधा करते थे कभी कुछ कभी हंसते थे कभी कुछ अपने आप में सोच करके हंसने लगते थे खड़े खड़े कभी किसी को देख करके हंसते थे किसी गोपी पर या कहीं कुछ देख कर हंसते थे स्मितानि बहुवचन आपके स्मितों की जय हो यात्रा संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जैसा हंसने वाला स्मित करने वाला कोई नहीं जयंती का कथम भूतानि स्मितानि सीतानि सीतानि का ठंडी 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 हंसी ठंडी मुस्कान ठंडी का मतलब परमानंद देने वाली आनंद में सराबोर कर देने वाली आपकी मुस्कान है और कैसी है अखंड निर्वाण रस प्रवाह विखंडिता से रसांतरारी अखंड न खंडा जैसा जिसका कोई खंड नहीं वो धारा रुके नहीं उसको अखंड कहते तो भगवान के मंद अस्मित से मुस्कान से अखंड निर्वाण रस प्रवाहित होता है निर्वाण रस का अर्थ होता है वह रस जिसमें कोई दुख न मिला हो बाधा न हो निर्वाण वाण का अर्थ होता है दुख संस्कृत में और निर्वाण का अर्थ है दुख से शून्य केवल विशुद्ध सुख उसको निर्वाण सुख कहते हैं निर्वाण रस तो आपके मुस्कान से अखंड और विशुद्ध रस के प्रवाह बहते हैं और उन प्रवाहों से विखंडित अशेष रसांतराई और जितने और जगत के रस हैं भोग या मुक्ति आदि में सब विशेष खंडित हो जाते हैं और रसों की स्पृहा नहीं रह जाती है जो आपकी मुस्कान को देख ले अखंड निर्वाण रस प्रवाह विखंडिता से रसांतराई अशेष रसांतराई
समग्र रसांतराणी अन्य जितने भी रस हैं, अन्य जितने भी सुख हैं, वे सब फीके हो जाते हैं आपकी मुस्कान देखने पर। मतलब इसमें इतना आनंद है। और अयम कृतोद्वान तो सुधारणवाणी, स्वयं आनंद घन तो है ही मुस्कान है, लेकिन अयंत्रित तो उद्वान सुधारणवाणी, बिना कंट्रोल के ये आनंद के समुद्र को, अमृत का समुद्र मतलब आनंद के समुद्र को ये उद्वांत कर देते हैं, उद्वेलित कर देते हैं। या उद्वांत का अर्थ है कि उसमें से आनंद का समुद्र निकलता है, आनंद के समुद्र को बढ़ा देते हैं। अयंत्रित उद्वांत समुद्र, ऐसे समुद्र की कल्पना कीजिए जिसके तरफ कोई तट न हो, फैल रहा हो चारों तरफ, ऐसा समुद्र तो उसको उद्वान तो सुधारण कहेंगे। और उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं, अयंत्रित उद्वान तो सुधारण वाली, अनंत अनंत आनंद के परमानंद के समुद्र को ये बढ़ा देता है। आपकी मंद मुस्कान, आपके मंद मुस्कान की जय, मतलब हमें दिखाइए ये भाव। जयंती भगवान के मुस्कान पर भी बिलमंगल ठाकुर जी बात कहें, भगवान की मुस्कान पर ही कुछ पद हैं। सूरदास जी के मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर कृष्ण हमारे चोर हैं, मतलब हमारी चोरी किए हैं। क्या चोरी किए हैं और कैसे किए वो तो यहाँ है नहीं, या जब थे तो क्या चोरी किए हैं। समग्र धन में सबसे बड़ा धन अपना मन है, मन चुरा कर लेगा। मन हरि लिया माधुरी मूरती, मन हरि लिया मन हरि लिया माधुरी मूरती, मन हरि लिया। ठीक है, मन हर लिए, मन शरीर के भीतर बंद था, किले में कमरे में बंद था, कैसे ले लिए, केवल देख करके। चितये नयन की कोर मधुकर, चितये नयन की, नेत्र के एक हल्के कोना से ही चित खींच लिए, नयन की कोर, कोर कहते हैं तिरछी चितवन से देखे बस हमारे चित को चुरा दी। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे। उद्धव जी ने कहा कि जब चोर चोरी करने आया तो पकड़ा क्यों नहीं, इस समय हाहा क्यों कर रहे। मान लीजिए उद्धव जी कहे, या भ्रमर ही भ्रमण कर रहा है तो मन राधा रानी ये समझती है कि कह रहा है तो पकड़ा क्यों नहीं चोर। अब जो चोरी कर तो मथुरा चला गया तो अब हाहा करने से क्या हो। तो ये कहते हैं हम लोगों ने पकड़ा था, प्रेम प्रीति के जोर, अपने प्रेम और स्नेह के बल पर पकड़ा था उस चोर को, वृंदावन में 11 वर्ष रहा पकड़ा था, लेकिन फिर भी तोड़ताड़ करके सारा बंधन भाग गया, इतना पक्का और अनुभवी चोर। पकड़ोते ही हृदय उदयंतर, पकड़ोते ही प्रेम प्रीति के जोर मदी, उस चोर को हम लोगों ने प्रेम और स्नेह के बल से पकड़ा था। इसलिए इसका अर्थ है यह है कि हमारे प्रेम और स्नेह में कुछ दिन वो रहे। कहां पकड़ी थी? हृदय के उर में पकड़ी थी। हृदय का अर्थ दूर होता है, लेकिन एकदम भीतरी हृदय, इसका अर्थ है हृदय के भी हृदय में घर बिल्कुल भीतर कोठरी में सेल में बंद की थी। उस चोर को पकड़ करके हम लोगों ने बिल्कुल भीतर किया। पकड़ोते ही हृदय उदयंतर प्रेम प्रीति के जो गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, गए छुड़ाए तो प्रेम से पकड़ा था और प्रेम का सारा बंधन तोड़ दिया। चोर भाग गया। कैसे भाग गया? आखिर क्या? तो ये कहते हैं कि वो फुसला दिया, भागा और भागते भागते दे दिया एक चीज उपहार में, भेंट। क्या? दए गए हंसनिया खोर मधुकर श्याम हमारे। जाते जाते हंस करके देख दिया वही जगह, हम तो उसी में भूल गए, भाग गए। चोर भी कहीं जाते हैं, जैसे कुत्ता कोई भूक रहा है तो उसको रोटी डाल देते हैं, भूकना छोड़ देते हैं। तो यहां राधा रानी कह रहे हैं कि हंसी दे गया अपनी, जाते जाते बस मुस्कुरा करके गया। हम उसी में अपने को कृतार्थ मानते हैं कि बहुत मिल गया, बहुत मिल गया। चोर तो भाग गया, हंसी दे गया, चित्त ले गया। दे गए हंसनी अकोर, अकोर का अर्थ है भेंट, बख्शीश, ये दे दे। भगवान जाते जाते गोपियों पर मुस्कुरा करके गए थे और वही अवलंबन हो गया जीने का। भगवान ने मुस्कुरा करके जो गोपियों को इशारा किया कि प्रियाओं में निश्चित आ जाऊंगा, अपना बदन मलिन मत करो, रो मत, तो वही एक आधार रह गया। गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, दए गए हसनी अकोर, दए गए हसन सोवत ते हम उच की परी है, सोवत ते हम उच की परी है। प्रश्न हो गए कब चोरी हुई, कब चोरी किया कृष्ण ने? तो प्राय चोरी रात में होती है। तो राधा रानी कहते हैं कि जब चोरी हो गई चित्त की तब मैं अकस्मात जगी। तो जगी तो देखती हूं कि चोर का ही दूत खड़ा, तो चोर को बचाना चाहेगा, तो आकर के निर्गुण ब्रह्म की बात कहा। यहां भोर में जगने का मतलब सावधान हो जाना। जब मैं सावधान हुई तो ये ऊपर से चोर के तरफ से भोके का और उसको सही बता रहा है, हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगा। सोवत ते हम उच्च की परी है, सोवत ते हम दूत मिलो मोहि भोर। बताइए चोर भाग जाए और चोर के तरफ से कोई दूत भेजा जाए ये कहने के लिए नहीं नहीं चोरी हुई ही नहीं है। बताइए सूर श्याम मुस्कनी मेरे सर्वस ले गए नंद किशोर, सूर श्याम मुस्कनी मेरे सर्वस ले गए नंद किशोर, सूर श्याम मुस्कनी मेरे सर्वस ले गए नंद किशोर। मुस्कानी का अर्थ है कि मुस्कान भर दे करके हमारा सर्वस ले गए नंद किशोर, सब कुछ ले। पहले तो कह रहे हैं कि मनहर लियो मान ले गए, लेकिन यह कहते हैं सर्वस सर्वस्व, स्व का अर्थ धन, सर्वस्व ले गए, कुछ भी नहीं छोड़े, एक मुस्कान दे करके। फिर विलाप करती है गोपी,
कि हे प्रियतम, हम आपके प्रेम में रंगी हुई हैं, बिलख रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण ली, भाई छोड़ा, माता छोड़ा, पिता छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पति छोड़ा, आप हमको जिला लीजिए, हम आपके विरह में मर रहे हैं।
पूरना पीयूष प्रेम आश की हारो माँ, पूरना पीयूष रोम रस भी न सुधी भूली गे है गात की,
हे प्रियतम आपकी हंसी, आपकी चाल, आपकी लीलाओं का आसव अमृत में खूब पी, और वह अमृत पीने से मैं सब सुधी भूल गई गेह की और गात की, शरीर की, मैं अपने शरीर को भी भूल चुकी, घर को भूल चुकी।
लोक पर लोक छाड़ी लाज से बदन मोड़ी, लोक पर लोक छाड़ी लाज से बदन मोड़ी, उघरी नची हाथ जी शंक तात मात की, उघरी नची हाथ जी हरिचंद पैदल से दिखावे क्यों न, हरिचंद तरस तेरे न दीन प्यासे प्राण पात की, तरस तेरे न दीन प्यासे प्राण पात की, एरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चाकुरी हूँ मैं, एरे ब्रिज चंद तेरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चाकुरी हूँ मैं, एरे ब्रिज चंद तेरे घन श्याम तेरे रूप की हौ चात की, तेरे घन श्याम तेरे तेरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं, तेरे ब्रिज चंद तेरे घन श्याम तेरे रूप की हौ चात की, तेरे घन श्याम तेरे रूप की हौ चात की।
हे ब्रजचंद आपके मुख की मैं चकोरी हूँ, और हे घनश्याम आपके रूप की चात की, दोनों रूप के रसिक, यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं चकोरी हूँ, और यदि आप घनश्याम हैं, घने बादल हैं, सांवले, तो मैं चातकी हूँ, तो आप रूप बरसाइए और आप अपने मुखचंद्र की छटा बिखेरिए।
तेरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं, तेरे ब्रिज चंद तेरे घन श्याम तेरे रूप की हौ चात की, तेरे घन श्याम तेरे रूप की हौ चात की। वाही मुख मंजुल की चाहती मारी च सदा, वाही मुख मंजुल हम को तिहारी ब्रह्म ज्योति करी वो कहा, हम को तिहारी ब्रह्म ज्योति करी वो कहा, कह न कर सुधा कर उपासनी को, कह न कर भानु की प्रभानी कहे जुहारी जरी बोकाहा भानु की प्रभानी कहे जुहारी जरी बोकाहा भोग रही बीरच बीरंची के संजोग सब भोग रही बीरच बीरंची के संजोग ताके सोग सारन को जोग चरी बो कहा ताके जोग सारन को जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो जब ब्रज चंद को अंगारन सौ फेरी डरी वो कहा जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु दिरहा चिंगारनी सौ फेरी डरी वो कहा दिरहा चिंगारनी सौ
तो एक सखी हवा को पवन को दूत बनाकर भेज रही कृष्ण के पास. यह पागलपन था. तो हवा क्या दौत्य करेगा.
तेरे दीर पन तेरो सब और गन बारी एरे दीर पन तेरो सब और गन तो सो और कौन मान धर कही बानी दे तो सो और कौन मान धर कही
बानी दे. वीर कौन है. वीर का अर्थ है भैया भाई. हे हमारे भैया कौन तुम सब और जाने में समर्थ हो. तुम्हारे लिए कहीं रुकावट नहीं है. कोई दूत जाएगा दूती जाएगी तो कई पहरेदार है मथुरा में इधर उधर. लेकिन तुम कहीं भी जा सकते हो. है ना. पवन तो कहीं भी जा सकता है. तेरे सब और गौन वारी तो मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ. तोसो और कौन तुम्हारे समान कोई नहीं है. मन धरक ही बानी दे तो अपनी धरक ही बानी को आदत को प्रकट करो. हमको खुश करो.
जगत के प्राण ओछे बड़े समान घन जगत के प्राण ओछे बड़े घन आनंद निधन सुख दान दुखी आनी दे आनंद निधन सुख दान दुखी आनी.
हे पवन तुम जगत के प्राण हो. तुमसे ही सब जी रहे हैं. इतना उदार व्यक्ति जो सबको जिला रहा है. प्राण हवा है. संपूर्ण जीवों के तुम जीवों को जिला रहे हो. हम पर दया करो. ओछे बड़े से समान और तुम्हारी सम दृष्टि भी है. बड़ा हो धनी हो विद्वान हो तब भी तुम में सांस लेता है. और तुम और गरीब भी है तो उसके आंगन में भी जाते हो. तुम ही एक ऐसे हो जो सबसे प्रेम करते. ये गुण बता रहे हैं हवा.
जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान गन जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान गन आनंद निधन सुख दान दुखी आनी दे आनंद निधन सुख दान दुखी आनी दे. जान उजियार गुण भरे अंत मोहि प्यार जान उजियार गुण भरे अंत मोहि प्यार
अब भैया मोही बैठे पीठ पहचानी दे
अब भैया मोही बैठे पीठ
अतः तुम एक कार्य करो प्रियतम को तो नहीं बुलाने को कह रही हूँ उनके चरणों की धूली ला दो मैं उसी से जी जाऊंगी
बिरहा भी था ही मूरी आखी न मेरा खो पूरी
बिरहा भी था ही मूरी आखी न मेरा खो पूरी
धूरी तीन पायन की हाने कुआनी दे धूरी तीन पायन की हाने कुआनी दे बिरहा भी था ही मोरी आँखी न मेरा खो पूरी बिरहा दे था ही मोरी धूरी तीन पायन की हाने कयानी दे
धूरी तीन पायन की हाने कयानी